کوئی جاہرات نہیں کرنی ہے کوئی کوئی جاہرات نہیں کرنی ہے بھگوان کے گیان میں برابر جھلکتا ہے, کیول گیان کا وشے ہے. یہ چنتاؤں کو مٹانے کے لیے ہے. شروع کریں تو چالو ہے آپ کا, ہو گیا. میں انتظار کر رہا تھا آپ کا کہ آپ یہ سیٹ کر لو اتنی دیر. ہاں ہاں میں 50 منٹ لوں گا. ٹھیک نمو ہری ہنتانم نمو سدھانم نمو ایریانم نمو وجیانم نمو سوگتانم منگلم بھگوان ویرو منگلم گوتم گنی منگلم کند کنداتیو جین دھرمو سمنگل سرو منگل مانگلیم سرو کلیان کارکم پردھانم سرو دھرمانام جینم جیتو شاسم سیادواد نئے شٹ دروی گن پریائے اور برمان کا جڑ کرم چیتن بند کا ہر کرم کے اوسان کا کہہ کر پروپ یتارتھ جگ کا جو کیا اپکار اس کے لیے دن وانی ماں کو وندنا شتوار وندنا شتوار. دوادشانگ مئی جنوانی ماتا ساکشات کیرتنکر پرماتماؤں سے نکلی ہوئی دیوی دھونی دیوی وانی ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ تیرتھنکر پرماتما کی دیوی دھونی چار سمے کرتی ہے. تین سمے تو انیواریہ روپ سے اور چوتھے سمے وشیش پرستھتیوں میں. تو یدی تیرتھنکر پرماتما کی دیوی دھونی چار سمے کرتی ہوگی تو صبح صبح تو وہ دربیان یوگ چلاتے ہوں گے. پھر کرنانویوگ اور شام تک جاتے جاتے پرتمانویوگ کی بات ہوتی ہوگی تھوڑا سا لائٹ لے. ایسا نہیں ہے بالکل بھی. مانے دیوی دھونی انویوگوں میں بٹ کر کے نہیں پھرتی. تیرتھنکر پرماتما کی جو دیوی دھونی ہے وہ تو سہج ہے اونکار وانی روپ اور سہج ہے. وستو سوروپ کی چرچا ہے, آتما پرماتما کی چرچا ہے, چھ دربے سات تتو کی چرچا ہے. یہ جو باقی تین انویوگوں کی چرچا ہے نا یہ تو بیچ بیچ میں پرسنگ وش آ جاتی ہے. کسی نے کوئی پرشن کیا, کوئی چرچا دماغ میں گھومنے لگی, کسی کو کوئی وکلپ آ گیا تو اس کے سمادھان سوروپ چرچا آ گئی. پھر گنگھروں کے مادھیم سے جب دوادشانگ روپ سے اسے گوتھا جاتا ہے پھر اس کے چیپٹرائزیشن کیے جاتے ہیں. پھر شنکر پرماتما کی دیوی دھنی کو سن کر کیونکہ سب سے زیادہ گرہن کرنے کی سامرتھ گنگھروں میں ہوتی, تیرتھنکر پرماتما کی دیوی دھنی کو سب سے زیادہ گراس کر سکیں ایسے گنگھر ہوتے ہیں. ان گنگھروں کے دوارا پھر چیپٹر بانٹ دیے گئے الگ الگ, آچارانگ سوتر کرتانگ اتھانانگ سمایانگ ویاکھیا پرجپتی گیاتر دھرم کتھا اپاسکا جنن سے کر دشا انتر اپاسک دشا پرشن ویاکرن وپاک سوتر درشتی واد کے بارے انگوں میں اس کو بانٹ دیا. फिर बारह अंगों में बांटने तक भी चार अंग योग नहीं है। अभी समझता हूँ, अभी जब उसके पश्चात काल क्रम से मौखिक चलता रहा गणधरों के बाद भी 600 वर्ष निकल गए लगभग 683 वर्ष और धर्मेनाचार्य हुए, और उसके बाद जब उसे लिपिबद्ध करना शुरू किया, लेखन पद्धति जब प्रारंभ हुई, तो चार विभाजन हो गए उसके। तो वास्तव में जनवाणी के जो चार विभाजन हैं, जो बंटवारा है, ये सब तो लेखन की पद्धतियां हैं, प्रतिपादन की शैली है। किसी भी तरह की संत ने किस तरह से उस बात को हाईलाइट किया, किसी भी तरह की संत ने किस तरह से हाईलाइट किया। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि द्वादशांग चार अनुयोगों में विभाजित नहीं है, अपितु दृष्टिवाद नाम का जो बारहवां अंग था उसके कुछ अंश को चार अनुयोगों में विभाजित करके लिपिबद्ध किया गया। माने लिखित जनवाणी चार अनुयोगों रूप में उपलब्ध है, ऐसा कह सकते हैं। बात कहीं से भी उठाएं, रीत रास्ता की निकल करके सामने आती है। सुबह वाले सेशन में हमने परावर्तनों की चर्चा शुरू कर दी थी। हमारी जो लाइफ चल रही है, यह लाइफ भी उसी परावर्तन का एक पार्ट है। द्रव्य परावर्तन और क्षेत्र परावर्तन की चर्चा अपेक्षित विस्तार से, विस्तार तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जितना अपने को यहाँ प्रासंगिक अपेक्षित है उतने विस्तार से हम सुबह कर चुके हैं। अभी काल परावर्तन की चर्चा अपने को करनी है। द्रव्य और क्षेत्र परावर्तन से भी अनंत गुना बड़ा है काल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन बहुत बड़ा था, उसके अनंत विभाग में अनंत सागर बीच जाने की बात कही थी मुझसे। यहाँ उठने के बाद में किसी ने पूछा कि द्रव्य परावर्तन के अनंत विभाग में अनंत सागर बीच जाते हैं, लेकिन सागर कितने टाइम में बीतता है? तो मैंने कहा सागर तो क्या कहूँ मैं, सागर तो सागर ही है, समुद्र जैसा ही है। जैसे समुद्र का अंत नहीं दिखता, सागर का अंत नहीं दिखता, ऐसे ही सागर की चर्चा करने बैठो तो उसका भी अंत हमारे मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से नहीं दिखता, इतना बड़ा काल है। किसान कुछ वर्षों में तो बता दो, क्या कहूँ, एक सागर के असंख्यात में भाग में, अनंत नहीं असंख्यात, एक सागर के असंख्यात में भाग में भी असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं, इतना एक सागर होता है। ऐसा एक दो सागर नहीं, ऐसे अनंत सागर, ऐसे अनंत सागर नहीं, ऐसे अनंत सागर एक बार, अनंत सागर दूसरी बार, अनंत सागर तीसरी बार, अनंत सागर अनंत बार, बराबर का चिन्ह लगाओ, इक्वल टू, और सामने लिखो एक पुद्गल परावर्तन। दिमाग क्यों घूम जाता है हमारा, दिमाग काम करना बंद करता है, क्या है पुद्गल परावर्तन? ऐसा काल हमने बिताया है, उससे अनंत गुना बड़ा था क्षेत्र परावर्तन। पुद्गल परावर्तन में पुद्गलों से संपर्क की बात कही, क्षेत्र परावर्तनों में जगह पर जन्म की बात कही। पुद्गल परावर्तन में हमने ये कहा कि ऐसे कोई पुद्गल परमाणु, ऐसे कोई पौद्गलिक संयोग नहीं है जो संयोग हमें प्राप्त नहीं हुए हो। क्षेत्र परावर्तन में कहा कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पर हमारा जन्म नहीं हुआ हो। आकर्षण छूटता है, आसक्ति टूटती है, इस चर्चा को सुनकर के भी आसक्ति नहीं टूटे। हम आपको कहे अरे हाँ ऐसी चीज खिलाऊंगा आपको पंडित जी, हमारे घर पे आना, आपने जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी। हम उसको परावर्तन का स्वरूप समझाएंगे तो क्या खिलाएगा, कितनी चीजें खा चुके हैं हम, कितना काल बिताया है। अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है, योगसार की योगेंद्र देव की गाथा है। पर सुख नहीं बस दुख पाया, मोह मोहित जीव ने, सुख नहीं पाया कभी हमने, दुखी दुख पाया है, क्या नहीं मिला हमारे को, ऐसे कौन से भोग हैं जो हमने नहीं भोगे, कौन सी विषय सामग्री है जो हमारे को नहीं मिली, ऐसे कौन से नए नए गैजेट जिनको देख करके हमारा चित्त आकर्षित होता है, डायमंड सेट है जिनको देख करके हमारे को लगे बहुत सुंदर है, कितने लाख का होगा ये तो, और आप सपने दिखाओ नए से तारे तोड़ के लाने के, ऐसा डायमंड सेट दिलाऊंगा तुम्हें, अरे अनंत बार लेना है क्या कम है उसमें, कौन सी विभूति रह गई, कौन सा वैभव रह गया, कौन सी पद प्रतिष्ठा रह गई, कौन सा क्षेत्र जमीन जायदाद मकान दुकान, कौन से क्षेत्र ऐसे रह गए जिन क्षेत्रों के हम स्वामी नहीं बने, जिस क्षेत्र पर हमने जन्म नहीं लिया, हमने तो उस क्षेत्र में जन्म आसान काम नहीं है, उन्होंने एक सुई बराबर जगह पर असंख्यात प्रदेश की बात कही थी, आप सोचो सुई बराबर क्षेत्र को कवर करने में आपके कितने अनंत जन्म लग जाते हैं, इसलिए द्रव्य परावर्तन की तुलना में क्षेत्र परावर्तन को अनंत गुना बड़ा कहा गया, अब क्षेत्र से भी काल परावर्तन और अनंत गुना बड़ा है, उससे भी अनंत गुना बड़ा, ये सिर्फ काल की चर्चा कर रहा हूँ, टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड हमारा बीता है, कभी नरक में रह करके, कभी त्रियंज गति में रह करके, कभी एकेंद्रीय आदि पर्यायों में, ये सब काल हमने बिताया है इतना इतना काल, किसका नाम काल परावर्तन, तो का काल के प्रत्येक समय में हमारा जन्म मरण हुए वो काल परावर्तन है, ये तो समझ नहीं आई बात, काल के प्रत्येक समय में जन्म मरण कैसे हो सकता है, काल तो व्यतीत होता जाता है ना, मान लीजिए 2005 में किसी का जन्म हुआ, 1970 में, 1950 में, 45 में किसी का जन्म हुआ, तो अब दोबारा तो वो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो टाइम तो गया, अब उस समय दोबारा जन्म कैसे होगा, होता है, इसी का नाम तो काल परावर्तन है, तो मैं हमने परावर्तन की चर्चा की थी ऐसा सर्किल घुमा करके, तो काल का भी सर्किल ऐसे पूरा होता है, जो काल एक बार बीत गया वो काल दोबारा आता है, चौथा काल दोबारा आएगा कि नहीं, वो भूमि का काल दोबारा आएगा कि नहीं, कल्प वृक्ष दोबारा होंगे या नहीं होंगे, बीत गया वो तो, भले ही बीत गया हो, भले वो उत्तम भोग भूमि का काल चला गया हो, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि का काल जिसे पहला दूसरा और तीसरा काल कहा गया है वो भले ही बीत गया हो, लेकिन दोबारा आएगा, पूरी की पूरी स्थिति दोबारा बनती है। देखो ये भी कहते हैं, वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं, न्यूज़पेपर में आपने कई बार इस तरह की बातें पढ़ी सुनी होगी जिनमें ऐसी बातें कही जाती है, इस सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण और आज के बाद में ऐसा चंद्र ग्रहण दोबारा 1600 साल बाद में होगा, 1500 साल बाद में होगा, 180 वर्ष बाद, ऐसी घटना, ऐसी चर्चाएं आती है ना, इसका मतलब वैसी की वैसी परिस्थिति कब दोबारा बनेगी, ये ऐसा योग बना है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहते हैं, ये जो ऐसा योग बना है, ऐसा योग 100 साल में एक बार बनता है, 300 साल में एक बार बनता है, इसका मतलब काल क्रम से वो परिस्थितियां दोबारा घटती है, उसी तरह की बनती है। आप क्या सोच रहे हैं, जिस तरह का रंग रूप और आकृति लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा रंग रूप आकृति और ऐसा शरीर हमारे को भूतकाल में नहीं मिला, मिला है ऐसे के ऐसे पुद्गल परमाणु, इन पुद्गल परमाणुओं का संयोग अनंत बार हो चुका है हमारे पास में ये रूप लेकर के, तभी तो वैसे के वैसे चेहरे दिख जाते हैं, कई बार पौधलिक रचना ही तो है और क्या है, जिन पुद्गलों का संयोग वर्तमान में देखा जा रहा है, इन्हीं पुद्गल परमाणुओं का संयोग भूतकाल में अनंत बार हो चुका है, और यदि नहीं संभले तो भविष्य में फिर मिल जाएगा, चाहते हो दोबारा मिले ऐसे संयोग, ये पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र की चर्चा की वो क्षेत्र परावर्तन में, काल परावर्तन में काल की शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, देखो उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, ये नाम सुने हैं आपने, ये दो तरह के काल हैं, सुबह गुरुदेव भी उत्सर्पणी अवसर्पणी बोल रहे थे प्रवचन में, हम लोग गुरुदेव तो बोल करके चले गए, अब आपको उत्तरपनी अवतरपनी काल की चर्चा सुनी हुई नहीं हो तो क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं, इतना समझ में आएगा कि होता है कुछ उत्तरपनी अवतरपनी, होता है, गुरुदेव को तो खबर थी उस बात की, हमें खबर है या नहीं है। कर्णानुयोग का विषय है, उस कल्पनिक काल की चर्चा, अकल्पनिक काल की चर्चा, उस काल की परिस्थितियां किस प्रकार की होती है। दस कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है, याद रखना, दस कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल मनीष भाई, और दस कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल। घड़ी है ना जैसी, वहां लगी है, इधर इधर दोनों साइड लगी है, मुझे भी दिखा रखे हैं सामने। घड़ी में नीचे से चले, छह से लेकर के और बढ़ते जाए, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तक पहुंचे, ये काल है उत्तरपनी काल, बढ़ता हुआ काल। और बारह के बाद में क्या होगा, फिर एक दो तीन चार पाँच छह, ये गिरता हुआ काल। तो बारह काल है, छह काल इस तरह से गिरते हुए और छह काल इसी तरह से बढ़ते हुए, ये पूरा एक चक्र पूरा हो जाता है। इसे कहते कल्प काल। कल्प काल शब्द तो सुना होगा सबने, सबने सुना है, तो ऐसे भी जिन्होंने नहीं सुना, नहीं सुना भक्तावर स्तोत्र बोलते हो कभी सुना है? भक्तावर स्तोत्र में तीन जगह प्रयोग किया कल्प काल का, कल्पांत काल बोलो, तीन स्थानों पर। ये कल्पांत क्या चीज है? कल्प का अंत काल वो कल्पांत काल। छह काल बढ़ते हुए उत्सर्पणी काल, फिर छह काल गिरते हुए अवसर्पणी काल, इन बारह कालों को मिलाकर के पूरे का नाम कल्प काल। और ये कल्प काल का वापस जब अंत हो तो कहलाता है कल्पांत काल। नवीन भाई, उस कल्पांत काल में क्या होता है? प्रलय होती है, सब खत्म हो जाता है। तो सब प्रलय होती है तब तो सब खत्म हो जाता होगा ना कि नहीं? फिर दोबारा रचना शुरू होती है और फिर प्रलय होती है। अरे अनंत बार हो चुकी प्रलय ऐसी, क्या दम है? दुनिया में भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंड में प्रलय तो अनंत बार हुई है। एक बार अंदर कर्मों में प्रलय मचे और सब खत्म हो जाए, फिर दोबारा शुरू नहीं होगा। देखो दुनिया की प्रलय तो होने के बाद दोबारा शुरू हो जाती है। ये तरक्की की जो व्यवस्था है, आर्यखंड की व्यवस्था है, एक बार नष्ट हो जाने के बाद पुनः वापस चालू हो जाएगी। लेकिन कर्मों की ऐसी व्यवस्था है कि एक बार वहां प्रलय आई और नष्ट हो गया सब कुछ, तो फिर कुछ दोबारा नहीं आएगा। फिर तो अनंत काल के लिए सिर्फ कश्य सुख का, उत्कृष्ट सुख का उपभोग करेगा। ये जो बीस कोड़ा कोड़ी सागर का हमने कल्प काल कहा है, इसके पहले समय में किसी व्यक्ति का जन्म, काल परावर्तन समझा रहा हूं, कैसे होगा काल परावर्तन? उस कल्प काल के पहले समय में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, फिर कह रहे हैं अब उसके दूसरे समय में जन्म ले रहे, जरा दूसरे समय में जन्म कैसे होगा जब पहले समय में जन्म हो गया तो? क्योंकि 10-20 साल की तो उम्र होगी, जितनी भी होगी अंतर्मुर्त होगी, दूसरे समय में जन्म कैसे होगा? कि दूसरे समय में जन्म लेने के लिए पूरे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल बिता करके फिर दूसरे समय में जन्म का चांस आएगा। बीच में तो जन्म मरण करता रहेगा, क्या सब? उत्सर्पणी काल का पहला समय, दीपक भाई ध्यान देना, ठीक है? थोड़ा बहुत भी आप झपकी तो परावर्तन निकल जाएगा, क्या अच्छा है ना? अंदर में चले जाओ तो बहुत अच्छा है, सच में निकल जाएगा परावर्तन। एक क्षण मात्र के लिए भी उपयोग, अपने उपयोग स्वभावी आत्मा में चले जावे, उपयोग में उपयोग है, 181 गाथा जैसा कहते हैं, उपयोग में उपयोग चला गया, अपने ज्ञायत में उपयोग चला गया, इस परावर्तन से हट करके, तो परावर्तनों का अभाव हो जाता है हमेशा के लिए, फिर परावर्तन नहीं रहते, फिर पंच परावर्तन नहीं होते, फिर पुद्गल परावर्तन नहीं होता, फिर उत्कृष्टतम यदि काल आपका होगा तो वो पुद्गल परावर्तन का भी अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम का, निर्वाण की प्राप्ति के पहले। तो देखो क्या कहते हैं, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी का पहला समय, दोनों मिलाकर के कितना काल था? 20 कोड़ा कोड़ी दिन, महीने, वर्ष, सागर, सागर रूपम, 20 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम में से पहले समय में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, और दूसरे समय में जन्म लेना है, फिर तीसरे समय में जन्म लेवे, फिर चौथे समय में जन्म लेवे, ऐसे बढ़ते बढ़ते 20 कोड़ा कोड़ी सागर के प्रत्येक समय में जन्म मरण होवे तो होता है एक काल परावर्तन। कितनी बार में हो जाता होगा? क्या बात कर रहे हो आप, एक समय से दूसरे समय तक पहुंचने में 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए। समझ आ रही है बात? कुछ कितना लंबा काल है, क्योंकि पहले समय में जन्म लिया, दूसरे का चांस कब आएगा? मिनिमम 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में। अब 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में जो दूसरे समय में जन्म लेने का चांस आया, उस समय तो कहीं जीवन भोग रहा है, कहीं मनुष्य एक्सपीरियंस वो समय निकल गया, तो दूसरे समय में जन्म लेने के चांस के लिए फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में चांस आएगा। अब तब भी दूसरे समय में जन्म नहीं हुआ, 10-20 समय ऊपर नीचे, 10-20 वर्ष ऊपर नीचे जन्म हुआ, तो फिर दोबारा 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में दूसरे समय में जन्म का अवसर मिला, हो गया। फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर के तीसरे समय में जन्म लेना है, फिर चौथे समय में जन्म लेना है, ऐसे बढ़ते बढ़ते उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रत्येक समय में जन्म मरण होवे तो काल परावर्तन पूरा होता है, अनंत काल बीत जाता है। अनंत काल मुझे उसमें अनंत काल बिताना नहीं है, मुझे तो मुश्किल से 10-15 मिनट। काल परावर्तन में कितना समय बिताना है अपने को? 15 मिनट का समय, 15 मिनट में काल परावर्तन पूरा। एक व्यक्ति बोले मेरे से कि पंडित जी, पंच परावर्तन कब तक पूरा कर दोगे? मैं कहा आज मैं कर दूंगा पूरा, आज मैं पंच परावर्तन पूरा हो जाएगा। कि हाँ, पंच परावर्तन नहीं करना, पंच परावर्तन की चर्चा करनी है। तो काल परावर्तन से प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? काल परावर्तन से प्रयोजन ये सिद्ध हुआ कि तुम्हें जो किसी काल की महिमा आ रही थी, तुम्हें किसी काल को देख करके बुरा लग रहा था, हम ये कहना चाहते हैं ऐसा कौन सा काल है जिस काल में तुम्हारा जन्म मरण नहीं हुआ, तुम कौन से काल को अच्छा मान रहे हो? कि नहीं साहब, चौथे काल की तो बात ही कुछ और थी। चौथा काल तो का जबरदस्त होता है, कहां हम अभागे जीव पंचम काल में हमने जन्म ले लिया, इस पंचम काल में तो अभागे जीव जन्म लेते हैं, छोटी होनहार है हमारी कि नहीं नहीं भैया, धोखे में हो आप। चौथे काल में जन्म लेकर के भी कौन सा तीर मार लिया था? चौथे काल में जन्म तो हुआ ही था ना, चौथे काल में भी जन्म हुआ, भोग भूमि के काल में भी जन्म हुआ, विदेह क्षेत्र में भी जन्म हुआ, दिव्य ध्वनि जिस समय खिलती थी उस काल में भी जन्म हुआ। हमारे दिमाग में जो ऐसी बातें आती है ना घूम फिर के, अरे साहब हमने तो वो काल देखा है पंडित जी, आपने तो नहीं देखा ना पंडित जी गुरुदेव को, हमने तो वो काल देखा है। क्या काल था? स्वर्ण काल था, ज्योतिषियों की भाषा में कहें तो कहते हैं गोल्डन टाइम, लाइफ का कैसा टाइम था, बिल्कुल स्वर्ण काल। क्या क्या फिर क्या हुआ उसमें ये तो बताओ, फिर क्या हुआ उस काल में? अरे नहीं नहीं था, बहुत जबरदस्त काल था, बहुत मजेदार काल था। कि नहीं, उसमें आत्म कल्याण हुआ क्या? अरे क्या धारा बहती थी, क्या लोग थे, क्या सुनते थे, तीन तीन टाइम गुरुदेव की ऐसी वाणी धारा प्रवाह चलती थी, बिल्कुल हजारों लोग ऐसे सुनते थे, हमने तो खूब यात्राएं की है, उस क्षेत्र में गए हैं, ऐसा समय देखा है हमने। आज तो क्या है, लोगों में रुचि नहीं दिखती है, उस समय की तो बात ही कुछ और थी। क्या अच्छा, फिर उस समय में क्या हुआ ये तो बताओ, समय दर्शन तो कर लिया होगा ना आपने उसी समय, जब इतना जबरदस्त काल बतला रहे हो, इतना जबरदस्त काल वो था, तो उस काल में क्या समय दर्शन नहीं किया? उस काल में भेद विज्ञान नहीं हुआ? अरे भैया, भेद विज्ञान पर काल में नहीं होता, स्व काल में आने पर होता है। सुबह सुना नहीं गुरुदेव का व्याख्यान, पर क्षेत्र में बहुत फिरा है, पर काल में बहुत परिभ्रमण किया है, स्व क्षेत्र और स्व काल की खबर नहीं है, अपने काल की खबर नहीं है इसे। पर की महिमा आ रही है, पर काल की महिमा आ रही है, दूसरे काल की महिमा आ रही है। अरे ये मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ का काल तो, अरे अपने 5 दिन का काल तो शिविर का नवीन भाई ऐसा बीता, मजा आ गया। 8 दिन का शिविर रखा आपने, 8 दिन का काल तो बहुत अच्छा था। कभी कभी आप नहीं कहते अपनी लाइफ के किसी टाइम पीरियड के बारे में, उस कालखंड के बारे में। मैं कहता हूँ उस काल में क्या फर्क हो गया? आपको यदि चौथे काल की महिमा आ रही है और पंचम काल की हीनता दिखाई दे रही है, मिथ्या रहे। चौथे काल की महिमा ये काल की महिमा है, ये परद्रव्य की महिमा है, इसका नाम मिथ्यात्व है। स्वद्रव्य की महिमा नहीं है, स्वभाव की महिमा नहीं है, और परद्रव्य की महिमा आ रही है आपको, उस काल की महिमा आ रही है। कौन सा काल अच्छा काल है बताओ? जिस काल में आत्मदर्शन हो वो काल अच्छा काल है। कितने भी अच्छे काल की कल्पना करते रहो आप, बहुत अच्छा काल था, अरे वाह उस समय तो हमने 30 साल तक तो ऐसा बीता। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का काल अच्छा था या नहीं था? अपार्थनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि का काल अच्छा था या नहीं था? हमारा जन्म मरण उस काल में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि उसके बाद में नया जीव पैदा हुआ है हमारा? ये जीव तो जन्म मरण करता ही आ रहा है ना सदा से, सदा से ऐसा जन्म मरण चलता आ रहा है ना। तो ऋषभ देव के समय में भी हम कहीं होंगे ना, नरक में होंगे कि देवगति में होंगे? ऋषभ देव के समय भी थे, अजितनाथ स्वामी के काल में भी थे, तम्बमनाथ स्वामी के काल में भी थे। अरे अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनने के काल में हमारा जन्म मरण हुआ है, उस क्षेत्र में भी हमारा जन्म मरण हुआ है। क्या समोह शरण में हम नहीं गए? गुरुदेव नहीं कहा करते थे केवली के आगे भी जाकर के कूड़ा का कूड़ा, कोरे के कोरे रह गए, कैसे चिकने घड़े हैं हम? अरे पंडित जी आप क्या सुनाओगे, हमने तो साक्षात गुरुदेव को सुना है। आप क्या सुनाओगे हमारे? आप गुरुदेव की सुन करके सुनाते हो, हमने डायरेक्ट उनको सुना है। कि आपने डायरेक्ट गुरुदेव को सुना है, हमने तो डायरेक्ट तीर्थंकरों को भी सुना है। बोलो, आपने होने वाले तीर्थंकरों को सुनाए, हम तो जो हो चुके जो तीर्थंकर दशा में थे ऐसे तीर्थंकरों को भी सुनाए। महिमा उसकी नहीं है सुनकर के, किया क्या ये बता? बात सुनने की नहीं, क्या दम है? बोलो, इन्हीं गाँव हमने ऐसा काम किया, ऐसा हुआ, कोई दम नहीं है, किया होगा। इतने साल हो गए हमारे को सुनते हुए, हो गए होंगे, अनुभव हुआ क्या, आत्मानुभूति हुई क्या, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई क्या, वेद विज्ञान हुआ क्या, अतिंद्रिय आनंद मिला क्या? नहीं मिला तो बैठ जा नीचे, कुछ नहीं, हमारी दृष्टि में कोई कीमत नहीं है। अनंत बार सुना है ऐसा। देखो काल परावर्तन क्या कह रहा है हमारे को, काल की महिमा नहीं आनी चाहिए, ये काल परावर्तन सिखा रहा है। काल परावर्तन हमारे को ये शिक्षा दे रहा है, काल परावर्तन ये हमारे को संदेश दे रहा है कि दूसरे काल की तरफ देखना बंद करो, स्वकाल की तरफ देखो। द्रव्य परावर्तन ने पर द्रव्यों से दृष्टि हटाई, क्षेत्र परावर्तन ने दूसरे क्षेत्र से दृष्टि हटाई, काल परावर्तन ने पर काल से दृष्टि हटाने की बात कही। इसलिए हटाने की बात कही कि अब नया काल तो कुछ होगा नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि चौथे काल और पंचम काल में कुछ तो फर्क होता होगा। था मैं आपसे पूछता हूँ 2014 में और 2015 में क्या फर्क है? 19वीं सदी और 20वीं सदी में क्या फर्क है? 20वीं सदी और 21वीं सदी में क्या फर्क है? 1999 से जब 2000 आया सन, तो क्या फर्क पड़ा उसमें? सूर्य ने उगना बंद कर दिया, दिन रात में कुछ फर्क पड़ने लग गया, आपकी सेहत में स्वास्थ्य में कुछ एकदम फर्क आ गया, क्या हुआ ये बताओ? बस काल परिवर्तन होता रहता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ऐसे काल परिवर्तन होता रहता है। अनंत काल हो गया, रुलते हुए अपने स्वरूप को नहीं जाना पहचाना भैया, इसलिए दुख उठा रहा है। अभी यदि ये काम नहीं किया तो कब करेगा? अभी यदि ये बात स्वीकार नहीं होगी तो फिर कब होगी? जैसे काल परावर्तन की चर्चा की है, उस काल परावर्तन से भी अनंत गुना बड़ा कहा है भव परावर्तन। आगे बढ़े अपन, द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन अनंत गुना बड़ा, क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन अनंत गुना बड़ा, तब पूरा होगा वो, समझ गए ना आप? एक एक समय बढ़ाते 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 बढ़ाते, और समय कितना होता है ये भी तो बता दो पंडित जी एक बार, समय कितना बड़ा है? सागर में, सागर के असंख्यात में भाग में असंख्यात वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक एक घंटा एक एक मिनट का, साठ साठ मिनट का, एक मिनट में साठ सेकंड, और एक सेकंड के में संख्यात हजार कोड़े कोड़ी आवलिया, और एक आवली में भी असंख्यात समय, एक आवली में चौथे नंबर का असंख्यात जगन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समय होते हैं एक आवली में। और एक आवली काल बिताने के अंदर तो न मालूम कितने असंख्यात कूड़ा कूड़ी साधन निकल जाएंगे क्या। एक आवली प्रमाण काल के अंदर जन्म मरण करने में असंख्यात कल्प काल निकल जाए, असंख्यात कूड़ा कूड़ी सागर बीत जाए, तब तक उसमें जन्म मरण का क्रम पूरा नहीं हो। भी कूड़ा कूड़ी सागर के प्रत्येक समय में जन्म मरण की बात है। चौथे काल का ऐसा कौन सा समय है जिस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था? हर समय में जन्म हुआ चौथे काल के, छठवे काल में भी हुआ है तो चौथे काल में भी हुआ है। अब उससे अनंत गुना बड़ा कहा है भाव परावर्तन। अब भाव की बात कर लो आप, ये भाव परावर्तन क्या बतलाता है हमारे को बतलाओ। ये भाव परावर्तन कह रहा है कि कौन सा भाव ऐसा था जो तेरा नहीं हुआ। अब भाव की बात हुई, भाव परावर्तन को चार भागों में बांट दो, बहुत संक्षेप में लेता हूं, बहुत पांच से उसको लेने की कोशिश करता हूं। एक मनुष्य भाव परावर्तन, एक तेयज भाव परावर्तन, एक नरक भाव परावर्तन और एक देव भाव परावर्तन। मनुष्य जन्म मिला कि नहीं पहले कभी? मनुष्य भाव परावर्तन किया है कैसे पूरा होता है? जगन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक प्रत्येक आयु का धारी ये भाव धारण करे तो वो भाव परावर्तन होता है। कहां से शुरू करते हैं समझ लो आप। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं नरक भाव परावर्तन की, नरक भाव परावर्तन किसे कहेंगे? तो मैं कह सकता हूं नरक में मिनिमम आयु कितनी है सबको पता है, सब जाके आए हो क्या आप लोग? हाँ जाके आए हैं, ठीक है। 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु है नरक में। अब उस 10,000 वर्ष में जितने समय होंगे उतनी बार, 10,000 वर्ष में समय कितने होंगे उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने। ओ 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु वाला नारकी बने, और फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु लेकर के नारकी हो, फिर 10,000 वर्ष दो समय की आयु वाला नारकी हो, फिर 10,000 वर्ष तीन समय की आयु वाला नारकी हो, फिर 10,000 वर्ष चार समय की आयु वाला नारकी हो, ऐसे बढ़ते 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 एक सागर दो सागर तीन सागर चार सागर पांच सागर 33 सागर तक एक एक समय बढ़ाते हुए बढ़ना है। समस्त आयु वाला नारकी जब हुए तो नरक भाव परावर्तन पूरा होता है। कितनी बार नरकों में गया है? नरकों में जी मार पड़ी वो गुजरा जमाना भूल गया, चेतन को मिला जब नरतन तो फिर होश में आना भूल गया, इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। सोचो आप कैसे भाव परावर्तन होगा, किसका नाम है भाव परावर्तन? अभी नरक की चर्चा की है, देवगति का ऐसा कौन सा भाव है जो तूने धारण नहीं किया? राजा बना है चक्र, ऐसे ऐसे पद तूने धारण किए, सम्राट हुआ, महासम्राट हुआ, मांडलिक राजा हुआ, महामंडलेश्वर राजा हुआ, देव बना, देवांगनाए, रिद्धिधारी देव हुआ, न मालूम कैसे कैसे पद तूने प्राप्त किए और प्राप्त करके छोड़ दिए, और फिर दोबारा क्या हुआ? ये सब काम हुए हैं ना भूतकाल में, ऐसी सब अवस्थाओं की प्राप्ति नहीं हुई होगी तो वो भाव परावर्तन पूरा कैसे होगा? मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रेवक उपजायो, अनंत वार ग्रेवकों में चला गया, ग्रेवकों से उत्कृष्ट और क्या भाव हो सकता है बतलाओ? मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरण भोग मनोरथ मेरे। भोग भूमियों में जाकर के जन्म लिया, ऐसे ऐसे भोग होंगे। तिलोय पंडित में यति वृषभाचार्य कहते हैं ऐसे भोग होंगे तूने, चक्रवर्तियों के भोग से भी अनंत गुना भोग भोग भूमियां जीव भोगते हैं, ऐसा गाथा में लिखा मूल गाथा में। चक्रवर्ती अपने जीवन काल में जितने भोग भोगता है उससे अनंत गुना ज्यादा भोग सामग्री और भोग ये जीव भोग भूमि में जन्म लेकर के भोगता है, अनंत गुना ज्यादा भोग। किसान हृदय उतर नहीं रही ये बात, हजम नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? चक्रवर्ती होता है कर्म भूमि का, चक्रवर्ती को भोग भोगने के लिए कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उठापटक करनी पड़ती है, उसके रसोइयों को खीर बनानी पड़ती है। और वो भूमिया जीव कल्प वृक्ष से मांगते हैं तो चक्रवर्ती से अच्छी खीर बन के सामने आ जाती है। बोलो कैसा पुण्य है, वो भूमिया जीवों का पुण्य कैसा जबरदस्त होता है, चक्रवर्ती का पुण्य तो कुछ नहीं है, पानी भरता है उसके आगे। वो भूमि में अनंत बार जन्म लिया हमने, वो भूमि के जीव मरकत के नियम से देवगति में जाते हैं, फिर वहां से हम लोग देवगति में चले गए, फिर देवगति में जाकर के हम लोग नंदनवन में चले गए थोड़े दिन घूमने के लिए, फिर अष्टानिका पर्व चल रहा था तो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के विधान पूजन करने के लिए चले गए। हम लोगों की बात कर रहा हूं, हमने किए हैं सब, नंदीश्वर द्वीप में भी गए हैं, वहां पूजन विधान आदि किए, आयोजन किए धूमधाम से, ये सब काम किए, फिर भी भैया अनादिकाल से आज तक मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कौन सा काम है जो तूने नहीं किया, ऐसा कौन सा भाव है मिथ्या दृष्टि के योग्य जो हमने धारण नहीं किया? यदि नहीं किया एकमात्र तो समझ लो वेद विज्ञान नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं करी, बाकी सब काम कर सब कुछ करना बाकी नहीं रहा, तू किया है, अब कोई दम नहीं है इसमें, इन सब कामों में अच्छे कार्यों में भी और बुरे कार्यों में भी, मैं दोनों प्रकार से कहता हूँ, खोटे काम करके भी कोई बात नहीं, हो गया ना, किया था ना, क्या हो गया उसमें? अरे नहीं नहीं पंडित जी आपको पता नहीं है हमने कैसे पाप किए हैं, हमने बहुत पाप किए हैं पंडित जी, बहुत काल बिताया हमने, ऐसा ऐसा काल बिताया, इतने पाप किए हमने, हम बता नहीं सकते आपको, कि कोई बात नहीं अब भूल जाओ, बीत गया ना, किए थे ना, मारी जी ने कम पाप किए थे, किए थे, क्या फर्क पड़ता है उससे, वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में तो सिद्धा लेने, भूतकाल के पापों में क्या दम है, भूतकाल में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किए हो, जिसने पाप ना किए हो, जो पापी ना हो, ऐसा दुनिया में तो कोई नहीं मिलेंगे ना, सब तरह के पाप किए हैं, सप्त व्यसनों में लिप्त रहे हैं, नरकों में जाकर के वेदनाओं को भोगा है, हत्यारे हुए हैं, हिंसा की है, मार मार करके खाया है, कहूं आप भयो बलहीन तमलनी करी खायो अति दीन, और कभी स्वयं बलवान हुआ तो दूसरों को मार करके खाने लगा, क्या काम नहीं किया हमने, कभी दूसरों को मार करके खाया, कभी हत्याएं की, कभी हिंसा की भी, कभी मारकाट किए, क्या क्या पाप नहीं किए हमने, कोई बात नहीं, मांसाहारी था वो पुनर्वा भील, बोलो था, कोई बात नहीं, अभी सिद्धालय में बैठा है, अनंत सुख का उपभोग कर रहा है, ऋषभ देव का विरोध किया था, समव शरण से बाहर निकलकर ऋषभ देव परमात्मा का विरोध किया था उसने, 363 मत चला दिए थे, बोलो ग्रहित मिथ्यात्व का प्रचार करने वाले, अरे ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व का प्रचार किया उस मारी जी के जीव ने कि स्वयं महावीर बनकर के भी उसको मिटा नहीं सका दुनिया से, बोलो खुद का चलाई हुई वो उल्टी गंगा समझ लो आप, खुद की चलाई हुई वो पाप रूप धारा जो मारी जी के भाव में 363 मत चला दिए थे उन्होंने, अब महावीर भगवान बनने के बाद तो ऐसा उपदेश देते कि लोगों के दिलो दिमाग से वो सारे के सारे ग्रहित मिथ्यात्व तो धुल जाता, नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं धुल सकता हूँ, ऐसे पाप आपने किए किए, कोई बात नहीं, पाठ गया, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, पंच परावर्तनों की चर्चा सुनकर के रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि पंच परावर्तन बीत चुके हैं, प्रभो बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय की तलछाओं। प्रभु बीत रही है ये जो काली रात थी, अमावस्या की रात थी, ये बीत रही है। ये पंच परावर्तन हमने बिता दिए हैं, लेकिन अब नहीं बिताएंगे, पर समझ लो आप, अब गुरुदेव मिल गए हैं, अब ये वितरागी तत्व ज्ञान मिल गया है, अब ये भेद विज्ञान की चर्चा पढ़ने सुनने को मिल गई है, अब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि अब नहीं बिताएंगे। कौन सा भाव की बात कर रहे हो आप? अरे हाँ, एक बात मैं भी ऐसा बनूंगा, इन जैसा बनना चाहता हूँ। उन जैसा बना है तू, वैसे क्षयोक्षम का धारी हुआ है, उस पद का धारी हुआ है। बोलो, नरेंद्र मोदी जैसा बनना है कि ओबामा जैसा बनना है? बोलो, कैसे बनने की बात करते हो आप? हमें भगवान बनना है, बने बनाए भगवान है हम। तो भाव परावर्तन क्या कह रहा है? अनंत बार ग्रेवकों में चला गया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं किया। ये भाव परावर्तन समझा रहा है ना। अब सोचो आप, ये छेड़ाला की पंक्ति को पढ़ते समय, छेड़ाला कौन से अभियोग का ग्रंथ भाई साहब? छेड़ाला कौन से अभियोग का? द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, ठीक है, कोई बात नहीं, द्रव्यानुयोग के पाले में रखो, लेकिन इस लाइन का अर्थ समझने के लिए तो करणानुयोग के चरण में आना ही पड़ेगा। इसके बिना ये लाइन कैसे समझ में आएगी? ग्रेवेक क्या है ये बताओ? ग्रेवेको में चला गया तो ऐसा थोड़ी ना जैसा मार्केट में घूम करके आ गया। ग्रेवेक माने क्या है? ग्रेवेक कौन सी जगह है? ग्रेवेको का स्वरूप क्या है? वहाँ आयु कितनी होती है? वहाँ कितना काल व्यतीत करता है? ये समझना पड़ेगा ना सब कुछ। 31 सागर पर्यंत की आयु वाला ग्रेवेको में जन्म लिया, और कितनी बार? अनंत बार। और क्या बन करके? ये मुनि बन करके। बोलो, आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? शरणानुयोग का पालन करो, कितना करोगे बोलो? द्रविड़ की साधु 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करने लगा, थोड़ा सा करके ऐसा समझता है ना हमने बहुत काम कर दिया, क्या दम है इसमें? थोड़ा सा रात्रि को पानी पीने का त्याग कर दिया तो ऐसा समझता है बहुत बड़ा काम कर दिया, बाजार का खान पीन सब छोड़ दिया तो समझता बहुत बड़ा काम हो गया, आलू प्याज जमीन को छोड़ दिया, खान पान थोड़ा सा शुद्ध हो गया, आचरण थोड़ा सा शुद्ध हो गया तो समझता है बहुत बड़ा काम हो गया। कौन से भाव की चर्चा कर रहे हैं यहाँ? यहाँ कह रहे हैं मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवे को बिजायो। मुनि बनने के बाद भी बाजार का खाता होगा? मुनि बनने के बाद भी रात को खाता होगा? मुनि बनने के बाद भी रात को पानी पीती है? छूट गए ना पहले ही, मैंने उस अवस्था को धारण करने के बावजूद भी क्या नहीं किया? आत्मदर्शन नहीं किया। जिन दर्शन किया लेकिन आत्मदर्शन नहीं किया। सब भावों की बात लगा लेना, वहां मनुष्य भाव की बात लगा लेना, कितनी बार मनुष्यों के भाव धारण किए, कितनी बार देवों के भाव धारण किए, त्रिगंजों में कौन सी अवस्था है ऐसी, जिस अवस्था को हम देख देख करके राजी होते हैं ना। समझ लो आप किसी जू में चले जाओ और देख देखो कितना कैसा दिखता है उन्हें, जानवरों को देख देख करके, अरे ऐसा जानवर को बनाए, वो जानवरों को देख देख करके महिमा आ रही है तुझे, जानवरों को देख करके उनकी कभी महिमा आती है कभी करुणा आती है, उनको देख देख करके महिमा आ रही है कि तू बनाए अनंत बार, उनको देख देख करके करुणा आ रही है कि कितना दुख उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको देख के करुणा आ रही है, तू स्वयं ऐसा न बने उसका विचार कर, उसका विचार करता है कि नहीं? भाव से भी अनंत गुना बड़ा है भाव परावर्तन। वो भाव परावर्तन क्या बताता है? भाव परावर्तन भावों की बात बतलाता है, तो इतना गजब है भाव परावर्तन। तो मैं भाव परावर्तन की चर्चा करूं रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। भाव परावर्तन एकमात्र ऐसी चर्चा है जो हमारे को शुभ भावों में संतुष्टि से व्यक्त करता है। क्या बोलो? गुरुदेव 45 सालों तक जिस शुभ भाव के ऊपर प्रहार करते रहे, मैं कहता हूँ भाव परावर्तन की चर्चा को आप गहराई से पढ़ो, आपको शुभ भावों के प्रति आसक्ति, शुभ भावों के प्रति जो खेत है, रस है, शुभ भावों के प्रति जो उपादेय बुद्धि है, वो टूटे बिना नहीं रहे, ऐसी चर्चा है। अब भाव परावर्तन तो करना में उनका विषय है, लेकिन उस भाव परावर्तन के माध्यम से बतलाना क्या चाहते हैं वितरागी संत? उस भाव परावर्तन के माध्यम से बतलाना चाहते हैं, मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कौन सा भाव है जो तूने नहीं किया। अब आपको ऐसा लगेगा भावों में क्या दम है साहब, कितने भाव होते होंगे। आप कह रहे हो कि भाव परावर्तन से भी अनंत गुना है, सबसे बड़ा परावर्तन कह रहे हो, ये बात तो समझ में नहीं आ रही हमारे को। द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन अनंत गुना बड़ा, क्षेत्र परावर्तन से नवीन भाई काल परावर्तन अनंत गुना बड़ा, काल परावर्तन से भाव परावर्तन अनंत गुना बड़ा, और भाव परावर्तन से भी अनंत गुना बड़ा भाव परावर्तन। इसका अर्थ क्या निकलता है, मैं इसको थोड़ा उल्टा बताऊं, तो जिस समय भाव परावर्तन पूरा होता है तब तक अनंत भाव परावर्तन बीत चुके होते हैं। क्या कहा, एक भाव परावर्तन होगा तब तक अनंत भाव परावर्तन बीत चुके हैं, और जब तक एक भाव परावर्तन पूरा होता है तब तक अनंत काल परावर्तन पूरे हो चुके हैं, एक काल परावर्तन पूरा होता है तब तक अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो चुके होते हैं, एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है तब तक अनंत पुद्गल परावर्तन बीत चुके होते हैं, और पुद्गल परावर्तन भाव परावर्तन में देखो तो अनंतानंद 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 बीत चुके पुद्गल परावर्तन, तब जाके एक भाव परावर्तन होता है। इतने तरह के भाव है, इतने भाव होते हैं कि आपके, हमें जैसे लगता है भावों में कितने कितने भाव होते होंगे, हम तो दो भाव समझते थे, शुभ भाव अशुभ भाव। ज्यादा कर लो पूजा का भाव आ गया, भक्ति का भाव आ गया, खाने पीने का भाव आ गया, भोगने का भाव आ गया, 150 भाव, और भाव कितने तरह के होते हैं। आपकी दुकान में तो सामान के कितने कितने भाव है, कितने तरह के भाव होंगे, कितने भाव होते होंगे, दो चार तरह के कि नहीं नहीं हर आइटम का अलग भाव है, सबके भाव अलग अलग है, तो हमारे भाव कितने होते होंगे। तो आचार्यों ने उस भाव परिवर्तन को पकड़ने के लिए, बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मोटा मोटा जिससे आपको उसका भाव भाषण हो, भाव परावर्तन के भाव भाषण के लिए ये बात कहता हूँ कि ये भाव परावर्तन कैसे पूरा होगा, इतने कितने तरह के भाव होते होंगे कि देखो जैसे भाव करता है वैसे कर्म बनते हैं, बराबर, इसमें कोई शंका नहीं है किसी को। इस जीव के जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म बनते हैं, बराबर। अब जैसे कर्म बनते हैं वैसे उदय में आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्म जैसे उदय में आ रहे हैं उससे अंदाजा लग रहा है कि कर्म कैसा बांधा होगा, और उससे अंदाजा लगता है कि भाव कैसे किए होंगे। तो बोलो आपने जो ये कुर्ता पहन रखा है, ठीक है ना, ये कुर्ता मुझे कब प्राप्त होगा, कि ये कुर्ता आपको जो मिला है वो जिस कर्म के उदय से मिला है वो अलग कर्म का उदय है, और मैंने जो कुर्ता पहन रखा है ये कुर्ता मिलना अलग कर्म के उदय का काम है, दोनों अलग अलग कर्म है। इसका मतलब उस कर्म बंधन के लिए उदय में आने के पहले जो बांधा था उसके लिए परिणाम भी अलग अलग होगा। इसमें दुनिया में जितने पदार्थों का संयोग देखा जाता है उन सभी संयोगों की प्राप्ति के लिए किए बंधने वाला कर्म भी अलग अलग प्रकार का होता है, नहीं तो उसके उदय में वो कैसे प्राप्त होंगे। बोलो, मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, आपके पास में एप्पल का है, इनके पास में दूसरी कंपनी का है, इनके पास में दूसरी कंपनी का है, ये अलग अलग कंपनी का क्यों मिला भैया। एक एक मोबाइल नामक कर्म के उदय से मिले तो सबको मोबाइल एक जैसे मिलना चाहिए, मोटा ही मोबाइल नामक कर्म के उदय से यदि किसी व्यक्ति को मोबाइल की प्राप्ति होती है तो सबको एक समान मोबाइल क्यों नहीं मिलते, क्योंकि सबको मोबाइल मिलने योग्य कर्म का उदय न्यारा न्यारा है। तो सबका कर्म का उदय अलग अलग क्यों है, क्योंकि सबका कर्म का बंधन अलग अलग था। कि बंधन अलग अलग क्यों था, क्योंकि भाव अलग अलग हुए थे। अब पकड़ो उन भावों को तो कैसे पकड़ने आएगा बोलो। अब जब हम भावों को पकड़ते हैं तो अनगिनती भाव हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, अनंत अनंत प्रकार के भाव इस जीव के होते हैं। उनमें जब भाव परावर्तन पूरा होता है तो कौन से ऐसे भाव रह गए जो तुमने नहीं किए। मैं वस्तु स्वरूप को समझूंगा, मेरे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिणाम तो इतने अच्छे हैं, आत्मा को समझूंगा मैं, इतना पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा करूंगा, ये परिणाम आपके पहले कभी नहीं हुए होंगे भाव परावर्तन में। बोलो, क्या ये भाव परावर्तन का पार्ट नहीं है। साथ जिन परिणामों से यहाँ देवलाली में आकर के बैठे हैं, इस तरह के परिणाम क्या भाव परावर्तन में पहले नहीं हुए? आप जिस उत्साह से द्रव्यानुयोग की चर्चा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, या भगवान आत्मा को समझने के लिए बैठे हुए हैं, जिस उत्साह से और जिन परिणामों से, क्या ये परिणाम भाव परावर्तन का पार्ट नहीं है? कितना भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव क्यों नहीं हो, आखिर वो शुभ भाव ही है, वो भाव परावर्तन का पार्ट ही है। शुद्धों पे वो भाव परावर्तन का पार्ट नहीं है। शुभ अशुभ भाव भाव परावर्तन के पार्ट हैं। मिथ्या दृष्टि के योग के शुभाशुभ भाव अनादि काल से अनंत बार हम करते आ रहे हैं। मुनिव्रत धारण करने का भाव नहीं आया, बोलो। त्याग का भाव आया, उपवास का भाव आया, छोड़ने का भाव आया, ग्रहण करने का भाव आया, पाप का भाव आया, पुण्य का भाव आया, स्वाध्याय का भाव आया। मैं कहता हूँ आपके पंच परावर्तन की इस चर्चा में क्या हमने कभी घूमटसार नहीं पढ़ा? क्या कभी हमने समयसार नहीं पढ़ा? क्या समयसार की गाथाएं हमने कभी याद नहीं करी? करी है। अब सोचो जरा, अब हमें भावों को पढ़ करके हमें ऐसा लग रहा है जो संतुष्टि लग रही थी अपने परिणामों में, अपने को ऐसा लग रहा था यार मैं तो अपना जीवन तो बहुत अच्छा है, पड़ेगी दुनिया के लोगों से तो अपना जीवन बहुत अच्छा है कि दुनिया के लोगों ने भी तेरा जैसा जीवन बिताया है भाव परावर्तन में, और तुझे जिनको देख करके घृणा हो रही है तूने भी उन जैसा जीवन बिताया है, तो अब क्या करें? बोलो, इस पूरी चर्चा को सुनकर के करें क्या? ये पंच परावर्तन की चर्चा करना भी उसकी चर्चा है। इस पूरी चर्चा को सुनकर के निष्कर्ष ये निकला कि सब तरह के भाव भी किए, लेकिन इन भावों से निरपेक्ष जो परम पारणामिक भाव था वो दृष्टि का विषय नहीं बना, ये काम नहीं हुआ। सब तरह के भाव हुए, बाड़ी झापटक हुई, सब तरह के परिणाम हुए, सब तरह का खान पीन, सब तरह का भोग, सब स्थानों पर जन्म। काल अनंत है भैया, काल अनंत है, अनंत काल में ये सब काम हुए हैं, हमारे द्वारा किए हमने, एकमात्र सम्य पुरुषार्थ नहीं हुआ, अंतर्मुखी पुरुषार्थ नहीं हुआ। इसलिए कुछ भावों को देखकर संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, और कुछ भावों को देखकर अपने अंदर में हीन परिणाम लाने की जरूरत नहीं। मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया, मुझे तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था, मेरे मन में तो ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए था, कि कोई बात नहीं, गया आ गया, खत्म, दृष्टि हटाओ, पर्याय मात्र से दृष्टि हटाओ, क्योंकि ये भाव पर्याय हैं। ये शुभाशुभ भावों का काम ही परिवर्तन करना है, ये होते रहेंगे, परिणाम बदलते रहेंगे, दृष्टि अपरिणामी तत्व पर दो। ये संदेश पंच परावर्तन की चर्चा को पढ़ सुन करके मिलता है हमारे को, और ये निष्कर्ष यदि आपने निकाला तो पंच परावर्तन की चर्चा पढ़ना सार्थक हो गया, और यदि ये निष्कर्ष नहीं निकला तो पंच परावर्तन की चर्चा क्या पंच परावर्तन करते रहोगे? कुछ दम नहीं। अनंत बार ये पंच परावर्तन किए हैं और अनंत काल बाकी है। दुनिया में कोई क्षेत्र अच्छा नहीं है, कोई काल अच्छा नहीं है, कोई परिस्थिति अच्छी नहीं है दुनिया में, ध्यान रखना। वही क्षेत्र अच्छा है जिस क्षेत्र में बैठकर आत्म क्षेत्र में चला जाए, वही काल अच्छा है जिस काल में आत्मा का अनुभव हो जाए, वही परिणाम अच्छा है जिस परिणाम में त्रिकाली ध्रुव परिणाम का विषय बन जावे, वही परिणाम अच्छा है, वही भाव अच्छा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव ये सब ज्ञायक के लिए समर्पित हो तो सार्थकता है, बाकी तो अनंत काल बिताया है, अनंत काल और बीत जाएगा। हम सभी इस तरह से अपने उपयोग को उपयोग को हमारी आत्मा में स्थिर करें और पंच परावर्तनों का अभाव करके सिद्धालय में जाकर विराजमान हो, इसी भावना से बात करते हैं।